आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमांशी भारद्वाज और मैं आपके साथ आपकी नाइन्थ क्लास की साइंस बुक को डिस्कस करती हूँ। आज हम आपके साथ इस ऑडियो में एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो लास्ट चैप्टर जो है आपका सेकेंड चैप्टर, उसके अंदर हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स तक पढ़ा था। सो वो जो एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर अगर हम एलिमेंट्स के अंदर जाएं तो उसको जब हम डिवाइड करके देखेंगे या उसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स। तो उसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर के अंदर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट कीजिएगा, आप अपना बुक का पेज नंबर ओपन कीजिए। 31 एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। जो एंशियंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने हमेशा सोचा कि अननोन और अनसीन फॉर्म क्या होती है मैटर की। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर was considered long back in India around 500 BC. Divisibility of matter का एक concept था जो India में around 500 BC में माना गया था या accept किया गया था। An Indian philosopher Maharshi Kanad postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. So, एक महर्षि कनाद हुए थे हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर, उनका नाम उल्लेख आता है, उनके बारे में बताया जाता है। तो कनाद ने पदार्थ के बारे में बताया कि जब भी हम उसको मैटर को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो वो स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होता जाता है। अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन विल नॉट बी पॉसिबल। तो अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ जाती है जो जब वो पार्टिकल्स टूटते नहीं है या उसका फर्दर डिविजन पॉसिबल नहीं है। ही नेम दीज पार्टिकल्स एज परमाणु, उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया परमाणु, यानी परमाणु उनके अनुसार लास्ट डिविजिबल फॉर्म होती है, उनके अकॉर्डिंग ऐसा था। अनदर इंडियन फिलोसफर पखुदा कत्यामा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. एक और philosopher हुए जिनका नाम है पकुधा कत्यानमा, उन्होंने इसको और illustrate किया और कहा कि ये particles normally exist करते हैं combined form में और various form of matters को देते हैं। Around the same era, ancient Greek philosophers Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. उसी समय के आसपास कुछ ancient Greek philosophers, यानी जो ग्रीस में रहने वाले philosophers थे, जिनका नाम था Democritus और Leucippus, उन्होंने भी एक सजेशन दिया कि अगर इसी तरीके से हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि पार्टिकल्स और डिवाइड नहीं हो। डेमोक्रेटस कॉल्ड दीज इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स, मीनिंग इनडिविजिबल, और उन्होंने इसको नाम दे दिया एटम्स, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी एटम्स मतलब जिसको अब डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century. So, ye considerations to di gayi par inke upar koi experimental work nahi hua. By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. 18th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है और नेचुरली उसको खोजने में वो इंटरेस्टेड हो गए कि क्या होगा जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। एंटोने एल लेवोइजर laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. So, एक साइंटिस्ट आए हैं एंटोने एल लेवोइजर. उन्होंने सबसे पहले केमिकल साइंस के ऊपर काम किया और उन्होंने टू इम्पोर्टेंट लॉज दिए, किसके? केमिकल कॉम्बिनेशन के. सो अब हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, 3.1 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट बाय लेवोइजर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट. सो दो साइंटिस्ट हुए, एक लेवोइजर और एक जोसेफ एल प्राउस्ट. उन दोनों ने मिलकर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. देन जाकर जब उन दोनों ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, तब उन्होंने अपने दो लॉज को पास आउट किया. पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब भी कोई केमिकल चेंज या एक केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या चेंज इन मास होता है. अब आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करके इसके बारे में सोचना है. टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स. आपको इनमें से कोई भी एक सेट लेना है. एक्स और वाई में आपको तीन तीन ग्रुप्स दिए हैं, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा. प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई. इनमें से किसी को भी एक पेयर को ले लीजिए और उसका 5% सॉल्यूशन प्रिपेयर कीजिए. टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन एन इग्निशन ट्यूब. अब आपको थोड़ा सा अमाउंट वाई वाले सॉल्यूशन में से लेना है कॉनिकल फ्लास्क में, और थोड़ा सा सॉल्यूशन एक्स वाले में से लेना है इग्निशन ट्यूब में. हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली. अब उस इग्निशन ट्यूब को उस फ्लास्क के अंदर हैंग कर दीजिए केयरफुली. सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स. सॉल्यूशन मिक्स नहीं होने चाहिए. पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क. आप डायग्राम देखिए, फिगर 3.1. जिस तरीके से डायग्राम में आपको दिखाया है, सेम उसी तरीके से आपको अपना एक्टिविटी परफॉर्म करना है. वे द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट केयरफुली. नाउ टिल्ट एंड स्वेल द फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्स. पहले आपको फ्लास्क का वेट लेना है, देन उसको टिल्ट कर दीजिए और दोनों सॉल्यूशंस को मिला दीजिए. अब दोबारा से वेट कीजिए. व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क. डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. व्हाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क. डज द मास ऑफ फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज. सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप ये कंसिडर करेंगे कि जब मिक्सिंग हो गई सॉल्यूशंस की तो कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, और आपने फ्लास्क के ऊपर कॉर्क क्यों लगाया था, उसका माउथ क्यों क्लोज किया था, और क्या फ्लास्क के अंदर जब रिएक्शन हुई है तो उसके अंदर मास में या उसके कंटेंट में कोई चेंज आया है. सो आप इसके जो ऑब्जर्वेशन है उनको नोट डाउन करके रखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. So, यहाँ इन्होंने आपको एक illustration दे दिया, last में conclusion दे दिया कि law of conservation of mass ये कहता है कि किसी भी chemical reaction में, during a chemical reaction or during a chemical change, there is no change in the mass of the matter. Law of conservation क्या है? वो ये बताता है कि जब भी कोई chemical reaction होगी तो उसके अंदर मास कभी भी चेंज नहीं होगा, वो सेम रहता है. मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. ना मास को बनाया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन. सो यहां पर आपके ऑब्जर्वेशंस में आना चाहिए कि उसके मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा. नाउ सेकेंड लॉ, 3.1.2 लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शंस. सेकेंड लॉ पढ़ना है. लेवोइजर अलोंग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मेनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रपोर्शंस इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट. तो लेवोइजर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉज दिए. उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर ये नोट किया, नोटिस में आया उनको कि काफी सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं और इनके अंदर जो कंपाउंड है उसके अंदर सेम एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन में होते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। तो ये कंपाउंड कहीं से इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं से भी आए हो या उसको किसी ने भी प्रिपेयर किया हो वो सेम एलिमेंट के होते हैं और सेम प्रपोर्शन में ही प्रेजेंट होते हैं। इन अ कंपाउंड सच एज वॉटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। अगर एक कंपाउंड हमने लिया वॉटर तो उसके अंदर जो रेशियो होगा मास ऑफ हाइड्रोजन का मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ वो हमेशा 1:8 में ही रहेगा। वॉट एवर द सोर्स ऑफ वॉटर, वॉटर का सोर्स चाहे कहीं से भी हो, चाहे आपने वॉटर को सी में से लिया हो, चाहे आपने टैप वॉटर लिया हो, तो जो उसके अंदर जो वो वॉटर एक कंपाउंड है विच कंसिस्ट H2O, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन रहेगा वो 1:8 के रेशियो में ही रहेगा। दस इफ 9 ग्राम ऑफ वॉटर इज डिकम्पोज्ड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। अगर हम 9 ग्राम वॉटर को डिकम्पोज करेंगे तोड़ेंगे तो उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन हमें हमेशा ऑब्टेन होगा। सिमिलरली इन अमोनिया, अमोनिया भी एक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, उसका फॉर्मूला होता है NH3 are always present in the ratio of 14:3 by mass, whatever the method or the source from which it is obtained. तो इसका रेशियो भी यूनिवर्सल है 14:3. This led to the law of constant proportions, which is also known as the law of definite proportions. This law was stated by Proust as, in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. तो प्राउस्ट ने ये इलस्ट्रेशन दिया था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो एक केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि उनके मास का जो प्रोपोर्शन होगा वो डेफिनेट रहेगा, वो यूनिवर्सल रहेगा, वो कभी भी किसी भी उसमें चेंज नहीं होगा। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वॉज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. तो एक जो एक बड़ी प्रॉब्लम जो साइंटिस्ट ने फेस करी वो ये थी कि इन लॉज का प्रॉपर या एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो एक ब्रिटिश केमिस्ट आए जॉन डेल्टन, उन्होंने एक बेसिक थ्योरी दी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का नेचर कैसा होता है, इसके लिए थ्योरी दी किसने, जॉन डेल्टन ने। He took the same atoms as given by the Greeks and said the smallest particle of the matter are atoms. तो उन्होंने क्या चूज किया, नेम तो वही लिया एटम जो कि ग्रीक्स ने दिया था और उसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर कहा, यानी जो पार्टिकल स्मॉलेस्ट है किसी भी मैटर का वो एटम कहलाता है। His theory was based on the laws of chemical combination. उनकी थ्योरी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थी। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो जो उनकी थ्योरी थी उन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिए। अब हम जानेंगे जॉन डेल्टन के बारे कि जॉन डेल्टन कौन थे। जॉन डेल्टन was born in a poor weaver's family in 1766 in England. John Dalton का जन्म 1766 England में हुआ और वो एक बहुत ही गरीब घर से थे। He began his career as a teacher at the age of 12. 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया as a teacher. 7 years later, he became a school principal. 7 साल बाद वो स्कूल के प्रिंसिपल बने। In 1793, Dalton left for Manchester to teach mathematics, physics and chemistry in a college. 1793 में वो मैनचेस्टर चले गए जहां पर वो मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री एक कॉलेज के अंदर पढ़ाते थे। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग। इन 1808 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी व्हिच वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर। उन्होंने काफी सारे साल वहां पर बिताए पढ़ाने में और रिसर्च करने में, और 1808 में उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी को प्रेजेंट किया, जो कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई स्टडी ऑफ मैटर के फील्ड में। सो ये एक इंट्रोडक्शन था साइंटिस्ट जॉन डेल्टन का, अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब एटॉमिक थ्योरी जो डेल्टन ने दी थी उसके अनुसार क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं उसको जानेंगे। ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सो उनके अनुसार जितने भी मैटर्स हैं, चाहे कोई एलिमेंट हो, चाहे वो एक कंपाउंड हो, चाहे वो एक मिक्सचर हो, ये सभी मैटर के फॉर्म्स हैं, मैटर होते हैं। इन सभी के अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो एटम्स का है, यानी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं। और एटम्स क्या है? जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो उनके जो पोस्टुलेट थे एटॉमिक थ्योरी के वो आगे दिए गए हैं, उसको आप सुनिए। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर्स हैं वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, जिनको एटम्स कहा जाता है। सेकेंड, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स क्या है? इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, जिनको ना तो बनाया जा सकता है ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। थर्ड, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी गिवन एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होते हैं मास में और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनका मास आइडेंटिकल होगा और उनकी प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, डिफरेंट नहीं होंगी। फोर्थ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी और उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे। अलग जैसे टू एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन और एक एलिमेंट है नाइट्रोजन। सो दोनों के मासेस अलग होंगे जो उसके अंदर एटम्स हैं, और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। फिफ्थ, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं एक दूसरे से इन स्मॉल रेशियो या स्मॉल होल नंबर्स, ताकि वो कंपाउंड्स बना सके। सिक्स्थ, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। सो जो रिलेटिव नंबर है या काइंड्स ऑफ एटम्स हैं वो कॉन्स्टेंट रहते हैं किसी एक कंपाउंड में। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। सो आप नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जितने भी एटम्स हैं वो और स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacted with 6 gram of ethanoic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium ethanoate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. So, आपको इसको question में क्या given है कि एक reaction हुई जिसमें 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड के साथ। सो जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो होता है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोइट, यानी 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आपको शो करना है कि इन ऑब्जर्वेशन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो अप हुआ है, आपको रिएक्शन भी दी गई है। सो सबसे पहले जब भी आप रिएक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अपनी रिएक्शन को नोट डाउन करेंगे नोटबुक के अंदर। रिएक्शन को नोट डाउन करने के बाद जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आपको मासेस दिए हुए हैं उन मासेस को नोट डाउन करेंगे उसके नीचे। जैसे आपको सोडियम कार्बोनेट का 5.3 ग्राम दिया है, एसिटिक एसिड का आपको 6 ग्राम दिया है, सोडियम एसिटेट का आपको 8.2 ग्राम दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 ग्राम दिया है, वाटर का 0.9 ग्राम दिया है। इस तरीके से आप उसको नोट डाउन करेंगे। अब एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड पे होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास कभी चेंज नहीं होता। सो आप LHS और RHS के साइड का सम करेंगे, हेंस द ऑब्जर्वेशन विल बी इन द अग्रीमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप देखेंगे कि दोनों ही साइड पर 11.3 आपको मिल रहा है। सो ये ऑब्जर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। सो ये सिंपल क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं किस रेशियो में? 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, वाटर बनाने के लिए। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस? तो ऑक्सीजन गैस कितनी चाहिए कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ? सो हमें यहां पर रेशियो दिया है 1:8 और हम ये जानते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज होगी। देयरफॉर 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन यूज होगी, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मीन्स 3 × 8, तो आपका आंसर आएगा 24 ग्राम्स। सो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिएक्शन विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपको बस रेशियो से समझना है कि अगर रेशियो 1:8 है, इट मींस 1 ग्राम हाइड्रोजन यूज होगा 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, और 3 ग्राम के लिए आप 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट 24 ग्राम। Now question number 3. Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? Dalton's atomic theory ka kaun sa postulate result hai law of conservation of mass ka? So law of conservation of mass ko Dalton's theory mein se ek hi postulate support karta hai ki jo atom hai wo kabhi bhi create nahi kiya ja sakta aur kabhi bhi destroy nahi kiya ja sakta. Atoms can neither be created nor be destroyed. और law of conservation of mass क्या कहता है? The mass of a matter cannot be created nor be destroyed during a chemical reaction. So ये वाला जो postulate है, atoms can neither be created nor be destroyed, ये वाला law of conservation of mass से result करा गया है, या इसको निकाला गया है। Question number 4. Which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportions? So, law of definite proportion कौन से वाला बताता है? ये अब पूछा गया है आपसे। So, वो वाला postulate है कि the relative number and kinds of atoms are equal in given compound. आप इसे match कर सकते हैं कि the relative number and kinds of atoms, जो relative number होगा और जो kinds of atom रहेंगे किसी भी कंपाउंड में वो इक्वल ही रहते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द न्यू टॉपिक 3.2। व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होता है? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड आर मेसन बिल्डिंग वॉल्स? फ्रॉम दीज वॉल्स आर रूम एंड देन आर कलेक्शन ऑफ रूम्स टू अ बिल्डिंग। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूज बिल्डिंग? व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एंटी एंट हिल? It is a small grain of sand. Similarly, the building blocks of all matter are atoms. So, इसमें दिया गया है, आपको समझाया गया है कि atoms क्या है। Atoms को building blocks of matter कहा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे एक building में building block होती है, वहां पर ईंट, वहां पे जो bricks हैं, उसी तरीके से किसी भी मैटर के अंदर एटम्स मिल के एक मैटर को बनाते हैं. सो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर. हाउ बिग आर एटम्स, ये एटम्स कितने बड़े होते हैं? एटम्स आर वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटे हैं. दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर. वो इतने छोटे होते हैं कि हम ना तो उसको इमेजिन कर सकते हैं और ना ही उसको किसी दूसरी सब्सटेंस से या किसी दूसरी चीज से उसको कंपेयर कर सकते हैं. मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर. अगर मिलियंस ऑफ एटम्स को स्टैक किया जाएगा तब जाके इतनी पतली लेयर बनेगी जितनी आपके बुक के एक पेपर की है. अब हम कुछ रिलेटिव साइजेस देखेंगे एटम के. तो एटॉमिक रेडियस को जब मेजर किया जाएगा तो वो नैनोमीटर्स में किया जाएगा. ध्यान रहे नैनोमीटर्स कैसे होते हैं. 1 meter विल बी इक्वल टू 10^-9 नैनोमीटर. आपके बुक में -9 नहीं दिया है, -9 इसको कर लीजिएगा. नाउ रिलेटिव साइजेस, रेडियाई इन मीटर. एटम ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का एटम है उसकी 10^-10 मीटर उसका रेडियाई है. वाटर का अलग है, आपको गिवन है, स्टेबल से आप उसे देख सकते हैं. लर्न करने जैसा कुछ नहीं है इसमें. वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम. आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इतना छोटा साइज है तो हम उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जान रहे हैं. दिस इज बिकॉज आर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स. ये इसलिए जरूरी है कि हमारी जो पूरी दुनिया है, जो पूरा यूनिवर्स है, वो एटम्स से ही मिलकर बना है. इन छोटे छोटे कणों से या इन छोटे छोटे परमाणुओं से ही मिलकर बना है. वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू. हम उन्हें देख नहीं सकते पर वो सभी जगह पर है और कॉन्स्टेंटली हम जो भी काम करते हैं उसको वो अफेक्ट करता है. थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स. आज टेक्निक, कई सारी टेक्निक्स आ गई हैं जिसके द्वारा हम मैग्निफाई करके इन एलिमेंट्स के सरफेस पे कुछ एटम्स को देख सकते हैं. फिगर 3.2 आप देखिए, एक इमेज दिया गया है, इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकन. सिलिकन एलिमेंट के ऊपर जो सरफेस है उस पे एटम्स कैसे दिख रहे हैं उसको मैग्निफाइड करके आपको दिखाया गया है. नाउ टॉपिक 3.2.1, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सो आज मॉडर्न डे सिंबल्स क्या हैं अलग अलग एलिमेंट्स के. डेल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस. डेल्टन ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स को यूज किया एलिमेंट्स के वेरी स्पेसिफिक सेंस को डिस्क्राइब करने के लिए. व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही आल्सो मेंट अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट. सो इन्होंने क्या किया, डेल्टन ने उसके किसी क्वांटिटी को दर्शा के उस एलिमेंट का एक सिंबल बनाया. लेकिन एक और साइंटिस्ट है बर्जीलियस, उन्होंने कहा कि सिंबल अगर देना है तो उस एलिमेंट के नेम के स्टार्टिंग के टू लेटर्स से उसको सिंबलाइज किया जाए. सो फिगर 3.3 में आपको कुछ सिंबल्स दिए गए हैं एलिमेंट्स के जिसको प्रपोज किया था डेल्टन ने. जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए आप देखेंगे एक स्फेयर के अंदर डॉट है. कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड मर्करी. सो इस तरीके से उन्होंने सिंबल्स बनाए थे जो आज एक्सेप्टेबल नहीं है, आज इन्हें यूज नहीं करा जाता. इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम. शुरुआत में एलिमेंट्स के नेम्स को कहां से लिया जाता था, जहां पर उन एलिमेंट्स को सबसे पहले पाया जाता था या खोज होती थी. फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम सिप्रस. तो कॉपर का नाम कहां से पड़ा, सिप्रस से. सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो. Nowadays, IUPAC. IUPAC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स. आज की तारीख में जो एलिमेंट्स की नेमिंग की जाती है वो IUPAC नेमिंग सिस्टम से की जाती है. मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश. और ज्यादातर क्या नाम होता है उनका, एक लेटर या दो लेटर नेम में से लिया जाता है. The first letter of symbol is always written as capital letter and the second letter is as small letter. जैसे hydrogen, hydrogen के लिए capital H लिखा जाता है, aluminium के लिए Al, तो A capital होगा, L small होगा, ना कि A और L दोनों capital. इसी तरीके से cobalt, CO, C में C बड़ा है और O small है. So ये हुआ naming. इस topic को next audio में continue करेंगे. Thank you.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.